तस्मैनिया के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करते हुए दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाई है। प्रधानमंत्री ने एक राहत पैकेज की घोषणा की पीड़ितों और प्रभावित व्यापारों के लिए। ये पैकेज आंशिक रूप से कॉमनवेल्थ से फंड प्राप्त करेगा और लेबर ने इस बीच कोलिशन के बजट क्लेम को चुनौती देते हुए अपने आने वाले 10 सालों की योजना का ब्यौरा जारी किया। तस्मानिया में अब जब पुनर्स्थापन के प्रयास जारी हैं, दोनों ही नेताओं का ध्यान तस्मानिया पर केंद्रित है। कल बिल शॉर्टन ने लॉन्सेस्टन में राज्य आपत्कालीन सेवाओं के स्टाफ के काम का निरीक्षण किया और फिर लाट्रो पहुंचे, जहां पर दो व्यक्तियों का लापता होने का समाचार रहा।
I'm particularly impressed by the professionalism of our SES volunteers, working closely, I might add, with the Tasmanian Fire Service, police. But what we also see is communities rallying around each other.
डेवनपोर्ट में लिबरल की मार्जिनल सीट पर प्रीमियर विल हॉगमैन के साथ मेलकम टर्नबुल आए और 18 स्थानीय क्षेत्रों के लिए राहत सहायता की घोषणा की।
We are activating the National Disaster Relief and Recovery Arrangements, and this provides support to households, to businesses, to farmers, of course, to local councils, Peter, to rebuild infrastructure. This is funded jointly between the state government and the federal government. After the bill gets to $19 million, we pick up 75% of the cost.
इस बीच लेबर ट्रेजरी प्रवक्ता ने आह्वान किया कि सरकार अपनी 10 वर्षीय पॉलिसी का पूरा ब्यौरा दे। उन्होंने कहा कि कोलिशन इसमें आनाकानी कर रही है क्योंकि उनके आंकड़े सही नहीं हैं। विपक्ष का कहना है कि उनकी सरकार बनने पर वो बजट को सही स्थिति में 2021 तक ले आएंगे, जैसा कि इस समय कोलिशन का वादा है। उसका अनुमान है कि अगले 4 सालों में अभी अधिक घाटा आएगा, लेकिन लंबी अवधि में वो बजट को सही तौर पर संतुलित और मजबूत करेंगे। विपक्ष के ट्रेजरी प्रवक्ता क्रिस बॉवेन कहते हैं कि वो जानना चाहेंगे कि बजट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सरकार द्वारा 2014 के प्रस्तावित बजट में था और जिसे संसद में पारित नहीं किया गया। वो कहते हैं कि कोलिशन को विस्तार से चुनाव के दिन से पहले बताना होगा कि वो किस तरह से प्रस्तावित पॉलिसी को लागू करेगी।
Is the government really saying they're going to apply those measures retrospectively to the 1st of July after the election? They're going to apply those measures retrospectively? If they're not going to apply them retrospectively, then their budget figures are mythical. And the Treasurer needs to account for those two things today. The 10-year plan and how much of his 4-year plan is based on measures from the 2014 budget with heroic assumptions that they'll pass the Parliament.
ट्रेजर स्कॉट मॉरिसन ने तर्क दिया कि सरकार ने हमेशा से ही इस पर स्पष्ट विवरण दिया है कि वो बजट के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी।
Our budget has a projection to return the budget to balance in 2021. It's very clear how we get there, and the trajectory of our deficits falls to less than $6 billion over the budget and forward estimates. And how those figures arrived at are there for everyone to see in the budget.
और ग्रीन्स ने पूरा ध्यान लगाया चाइल्ड केयर पर और कहा कि उनकी प्रस्तावित योजनाएं परिवारों की आवश्यकताओं को और इससे संबंधित खर्चों को समझती हैं। अर्ली चाइल्डहुड प्रवक्ता सारा हैंसन यंग कहती हैं कि ग्रीन्स की योजना बजट में $370 मिलियन प्रतिवर्ष लाएगी। स्काई न्यूज पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवार चाइल्ड केयर का भार वहन कर सके।
We want to work towards a single means-tested payment to ensure that families that need the most help get it, but that also that no child is left behind. We need to make sure that we don't just see childcare as some type of babysitting service, that it is part of the early learning, that it is the important steps of education before children get to school. And in that sense, we're saying we need to guarantee access to 24 hours a week for every child, and that the level that parents would be expected to pay for that would be based on their income.
कल सिडनी में इंडिजिनस संगठन और समूह एक विज्ञप्ति जारी करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसे रेडफर्न स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें अब चुनावों के बाद बनने वाली नई सरकार को मूल ऑस्ट्रेलियंस के लिए सिस्टम में मुख्य योजनाओं की कमी पर ध्यान दिलाया गया। पूर्व एबोरिजिनल और टेरेस स्ट्रेट आइलैंडर सोशल जस्टिस कमिश्नर टॉम कार्मा कहते हैं कि वो चाहते हैं कि घरेलू हिंसा, अपंगता और आउट ऑफ होम केयर आदि मुख्य मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाए। रिकंसिलिएशन ऑस्ट्रेलिया के को चेयरमैन डॉ कार्मा कहते हैं कि वो चाहते हैं कि फंडिंग को बहाल किया जाए।
We ask that they reinstate the $534 million that was taken out of the Indigenous Affairs portfolio in the 2014 budget. And we also want them to commit to working with the Aboriginal and Torres Strait Islander leadership to establish a department of Aboriginal and Torres Strait Islander affairs.
और स्वतंत्र प्रत्याशी टोनी विंडसर ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर बानबी जॉयस पर आरोप लगाया कि माइनिंग कंपनी सेंटोस द्वारा नेशनल्स को कथित तौर पर दिया डोनेशन चंदा परस्पर विरोधी यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है। श्री विंडसर कहते हैं कि ये डोनेशन शुरू हुआ जब उन्होंने पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन का सुझाव दिया कि बड़े स्तर पर माइनिंग एप्लीकेशंस पर फेडरल मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
$80,000 was donated to the Federal National Party. The first payment occurred on the 15th of September 2011, 3 days after I first introduced the water trigger for consideration into the Federal Parliament. Then there was a stream of 16 payments. 1 month later, in June 2013, leading up to the 2013 election, $22,000 was actually paid.